कहते हैं नियति के आगे चाहे जितने जतन कर लो, अंत में होता वही है जो पहले से लिखा होता है। आज यही बात आध्यात्मिक जाति के योद्धाओं पर सच साबित हो रही थी। जो खुद को इस दुनिया का सर्वशक्तिमान समझ रहे थे, उनके हाथों से पैतृक देवनाग भी फिसल चुका था और उधर विनाशक नाग स्वयं को सील करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही विनाशक नाग पर मोहर पड़ी, वैद्यनाथ धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ आगे आया। उसने अपनी छड़ी से धूल की परत की ओर इशारा किया और शांत स्वर में बोला,
यह स्थिति अच्छी नहीं है। विनाशक नाग ने खुद को सील कर लिया है और उसकी जन्मजात दैवीय प्रतिभा भी इस धूल में समा गई है।
तभी एक योद्धा ने घबराकर पूछा, ये सील कितने समय तक रहेगी? इस पर वैद्यनाथ ने गंभीरता से उत्तर दिया,
असली समस्या ये नहीं है कि वो सील हुआ है, बल्कि ये है कि इस दौरान वो अपने चौथे परिवर्तन से गुजरेगा। जब वो प्रक्रिया पूरी होगी, तब हम में से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा।
विनाशक नाग अब तक केवल 3 परिवर्तन पूरे कर चुका था, फिर भी वो ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं से टक्कर ले सकता था। चौथे परिवर्तन के बाद उसकी शक्ति असीम हो जाएगी, तब शायद आध्यात्मिक जाति के उच्च अधिकारी भी उसे संभाल नहीं सकेंगे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिससे हर कोई डरता था। तभी बलिष्ठ योद्धा ने दांत भींचते हुए पूछा,
तो अब हमें क्या करना चाहिए?
वो जानता था कि उसने अपनी गुप्त तकनीक से बड़ी मुश्किल से विनाशक नाग को घायल किया था, लेकिन अंतिम वार से पहले ही वो सील हो गया। उसी समय आकाश से 3 आकृतियां तेजी से नीचे उतरी। उन्हें देखते ही वैद्यनाथ बोला,
अभी इस पर ध्यान मत दो, लगता है पद्मिनी की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है।
ज्यादा गंभीर?
बलिष्ठ व्यक्ति ने ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई और वो हैरानी जताते हुए बोला,
क्या पैतृक देवनाग का जन्म हो चुका है? और वो उस महिला के हाथ में क्यों है?
ये कहते हुए उसकी उंगली सीधे नील की ओर उठ गई। तभी एक अधेड़ योद्धा कलश ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा,
पद्मिनी को तो उसका पीछा करना था, फिर उसने पैतृक देवनाग को कैसे जाने दिया?
उसी क्षण वैद्यनाथ ने हल्की सी आह भरते हुए कहा,
इस यात्रा से पहले मैंने अपनी किस्मत को मजबूत किया था, लेकिन लगता है किसी की नियति मुझसे भी ज्यादा प्रबल है।
आध्यात्मिक जाति के मुख्य सदस्यों में से एक होने के नाते वैद्यनाथ ने भ्रामक मीनार में उपाधि प्राप्त की थी और उसका नाम चांदी के अक्षरों में अंकित था। अनगिनत अनुभवों के बाद वो भाग्य पर विश्वास करने लगा था, किंतु अब नील के हाथों में पैतृक दिव्यनाग देखकर उसे पहली बार अपनी किस्मत फीकी लगने लगी। लेकिन इससे पहले कि वैद्यनाथ कुछ और कहता, उस बलिष्ठ व्यक्ति ने नील को घूरते हुए कहा,
पद्मिनी, ये क्या हो रहा है? पैतृक देवनाग उसके पास कैसे पहुंच गया?
विनाशक नाग को अंतिम क्षण में खो देने से उसका क्रोध पहले ही चरम पर था। अब ना तो विनाशक नाग हाथ लगा था और ना ही पैतृक देवनाग। उसकी बात सुनकर पद्मिनी की आंखें हल्की चमक गई, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो नीचे उतर आई और उसके साथ सुलोचना के शरीर में मौजूद नील व यत्नेश भी आ गए। तभी वैद्यनाथ ने शांत स्वर में पूछा,
पद्मिनी, क्या पैतृक देवनाग का जन्म तब हुआ जब ये लड़की मीनार में घुसी थी?
पद्मिनी ने सिर हिलाया, हाँ आप ऐसा कह सकती हैं। उसी क्षण कलश ने भौंह सिकोड़ते हुए पूछा,
लेकिन आखिर उसने मेरा कवच तोड़ा कैसे?
इस पर पद्मिनी मुस्कुराते हुए बोली,
उसके पास आपनुस्कुदाल है, जो एक सर्वोच्च उपकरण है। ऐसे में आपका कवच कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो उसे रोक नहीं सकता। आपनुस्कुदाल में भी कर्म का नियम है, जो आपके नियम से कहीं अधिक मजबूत है।
अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। कलश ने धीरे से सिर हिलाया,
तो यही कारण था, तभी मुझे अजीब लग रहा था।
असल में कलश की सोच गलत नहीं थी, लेकिन उसने कमजोर लोग के योद्धाओं को कम आंका था। जैसे मध्य क्षेत्र में कालके ने धूम्राक्ष तलवार की सहायता से कर्म के नियम को छुआ था, वैसे ही नील भी पूरी तरह उस नियम का स्वामी नहीं था। वो केवल आबनुस्कुदाल की शक्ति पर निर्भर था। लेकिन तभी वो बलिष्ठ व्यक्ति दहाड़ उठा,
बहुत हो गया, पहले पैतृक देवनाग को अपने कब्जे मिलो, भले ही उस पर व्यवहार की छाप हो, लेकिन उच्च अधिकारी उसे संभाल लेंगे।
उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि पद्मिनी और यत्नेश ने पैतृक देवनाग नहीं लिया, बल्कि उस महिला को अपने साथ ले आए थे। लेकिन वैद्यनाथ इस दल का कप्तान था और उसकी सूझबूझ उस बलिष्ठ व्यक्ति से कहीं अधिक थी। पद्मिनी के भाव देखकर उसने तुरंत पूछा,
पद्मिनी, क्या तुम्हें कोई नई बात पता चली है?
जवाब में पद्मिनी ने हल्के से सर हिलाया,
हाँ तुमने सही समझा, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
उसके शब्द सुनते ही सबका ध्यान उसी पर टिक गया और वैद्यनाथ ने तुरंत पूछ लिया,
और वो जानकारी है क्या?
तभी यत्नेश हंसते हुए बोला,
पद्मिनी ने अनंत रूप मीनार का पता लगा लिया है और लगता है वो इसी लोक में है।
ये सुनते ही पूरा समूह सन्न रह गया।
क्या, अनंत रूप मीनार? तीन परीक्षण मीनारों में से एक?
एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगी। कई वर्षों से लापता अनंत रूप मीनार का नाम ही रोमांच पैदा करने के लिए काफी था। उसी क्षण बलिष्ठ व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा,
पद्मिनी क्या तुम सच कह रही हो?
वैद्यनाथ ने भी दोहराया,
क्या वो सच में इसी लोक में है?
इस पर पद्मिनी ने बिना हिचक सिर हिलाया, हाँ ये बात लगभग तय है। ये सुनकर बलिष्ठ व्यक्ति हंस पड़ा।
वैद्यनाथ पानी, इस बार हमारी किस्मत सच में चमक उठी है। विनाशक नाग भले ही हाथ से निकल गया, लेकिन अनंत रूप मीनार की कीमत उससे कहीं ज्यादा है।
कलश ने भी सहमति जताई और बोला,
आध्यात्मिक जाति फैल रही है, केवल दो परीक्षण मीनारे अब काफी नहीं है। अगर हमें अनंत रूप मीनार मिल गई तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन पद्मिनी, तुम्हें ये जानकारी मिली कैसे?
उसी क्षण पद्मिनी ने सुलोचना के शरीर में मौजूद नील की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये जानकारी इस लड़की ने दी है। ये सुनते ही बलिष्ठ व्यक्ति ने अपनी विशाल दराती लहराई और नील को घूरते हुए बोला,
तो बोलो अनंत रूप मीनार कहाँ है?
किंतु पद्मिनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अभी ये मायने नहीं रखता कि अनंत रूप मीनार कहाँ है। उसके शब्दों ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। सभी जानते थे कि अनंत रूप मीनार आध्यात्मिक जाति के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए जब पद्मिनी ने कहा कि वो सबसे अहम नहीं है तो हर कोई चौंक गया। कई निगाहें एक साथ उसी पर टिक गई। वैद्यनाथ ने शांत स्वर में पूछा,
अगर अनंत रूप मीनार महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उससे भी बड़ी क्या बात हो सकती है?
पद्मिनी ने बिना झिझक नील की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने बताया कि ये अनंत रूप मीनार में प्रवेश कर चुकी है। इतना ही नहीं, इसने वहां प्रतिभा स्मारक की परीक्षा दी और मेरे पिता का नाम भी देखा।
वरिष्ठ चक्रधारी,
वैद्यनाथ ने धीमे से बुदबुदाया और उसकी आंखें फैल गई। चक्रधारी को प्रतिभा स्मारक में कोई उपाधि नहीं मिली थी, फिर भी आध्यात्मिक जाति में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। यही वजह थी कि पद्मिनी को इस अभियान में शामिल किया गया था। यदि नील सच कह रहा था तो इसका मतलब बहुत गहरा होगा। पद्मिनी ने सिर हिलाया, जो मेरे पिता का नाम जानता है वो झूठ नहीं बोल सकता। इसका अर्थ है कि यह वास्तव में अनंत रूप मीनार तक पहुंची है। अब बलिष्ठ व्यक्ति का धैर्य टूटने लगा और उसने कड़क आवाज में पूछा,
तो फिर अनंत रूप मीनार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
उसी वक्त पद्मिनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यही लड़की है जो इस वक्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने प्रतिभा स्मारक में उपाधि प्राप्त की है, यानी इसे आध्यात्मिक जाति का सदस्य माना जा सकता है। ये सुनकर कलश हंस पड़ा,
क्या कहा, उपाधि? अच्छा मजाक कर लेती हो। वैसे इसकी उपाधि का रंग क्या है और शीर्षक क्या है?
तभी पद्मिनी कुछ सोचकर बोली, इस बात का सत्यापन बाकी है, लेकिन इसके अनुसार उपाधि स्वर्ग श्रेणी की है और वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। अब वहां हंसी गायब हो चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और बस बढ़ता हुआ तनाव था। तभी कलश झट से भड़क उठा और तीखे स्वर में बोला,
पद्मिनी क्या तुम्हारे सर में चोट लग गई है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो?
यहां तक कि वैद्यनाथ ने भी सिर हिलाते हुए कहा,
पद्मिनी तुम्हारा अनुभव अभी कम है, ऐसी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जाता।
उन सभी की प्रतिक्रिया साफ बता रही थी कि कोई भी नील की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। सच कहें तो खुद पद्मिनी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, फिर भी किसी कारणवश उसका मन नील पर भरोसा करने को कह रहा था। किंतु तभी उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली,
वैद्यनाथ भाई, अनंत रूप मीनार बहुत पहले लुप्त हो गई थी। उसके गायब होने से पहले भी वो थोड़े समय के लिए ही खुली थी। उस दौरान किसी को भी उपाधि मिलने की कोई पुष्टि नहीं है, फिर भी इसने स्वर्ग श्रेणी की उपाधि का जिक्र किया है। इससे साबित होता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। अगर इसने स्वयं अनुभव नहीं किया होता तो इसे इतनी जानकारी नहीं होती। इस पर कलश ने भौहें सिकोड़ ली और बोला,
हो सकता है इसे आध्यात्मिक जाति के बारे में पहले से कुछ जानकारी हो, या फिर किसी और ने वो उपाधि प्राप्त की हो। नहीं, ये नामुमकिन है।
वैद्यनाथ ने तुरंत सिर हिलाया। वैद्यनाथ अपनी बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। असल में सामान्य लोक और पितृलोक के बीच एक मूलभूत अंतर था जो जन्म से ही तय हो जाता था। पितृलोक की जीवन शक्ति कहीं अधिक प्रबल थी। वहां जन्म लेने वाले जीव स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते थे। इसके अलावा संसाधन, विरासत और ज्ञान की उपलब्धता भी पितृलोक में कहीं बेहतर थी। इसी कारण जब पद्मिनी ने कहा कि नील ने स्वर्ग श्रेणी की उपाधि प्राप्त की है तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तभी कलश को एक अहम बात याद आई। उसने तुरंत कहा,
पद्मिनी, तुम सबसे जरूरी बात भूल गई हो। उसने कहा था कि उसे आध्यात्मिक जाति की मान्यता मिली है, लेकिन मुझे उसके शरीर पर आध्यात्मिक जाति का कोई चिन्ह महसूस नहीं हुआ। फिर यह कैसी मान्यता है? यह सुनते ही सभी चौंक गए। सच में नील के शरीर पर कोई निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था कि या तो वो झूठ बोल रहा था या फिर उसने सच में प्रतिभा स्मारक में प्रवेश किया था। लेकिन वो स्वर्ग श्रेणी तो दूर, यहां तक कि दूसरी पंक्ति में आने लायक भी नहीं था। तभी कलश की बात पर पद्मिनी ने सिर हिलाया और तुरंत बोली, ये शरीर उसका असली शरीर नहीं है। उसने आत्मा स्रोत पत्थर की मदद से इस पर कब्जा किया है। लेकिन लगातार संदेहों से पद्मिनी खुद भी डगमगा चुकी थी, क्योंकि स्वर्ग श्रेणी की उपाधि सचमुच अविश्वसनीय लग रही थी। तभी बलिष्ठ व्यक्ति मुस्कुराया,
तो फिर जांच आसान है, उसका असली शरीर ढूंढ लेते हैं।
अब तक नील चुप था। वो जानता था कि अकेले इन सातों के सामने टिकना असंभव है। यदि उसे पैतृक दिव्यनाग को बचाना था तो उसे खुद को साबित करना ही होगा। नील आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, मेरा असली शरीर नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र के बाहर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। नील की बात सुनकर वैद्यनाथ कुछ क्षण शांत रहा। उसने धूल में जकड़े विनाशक नाग की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गया। फिर धीरे से बोला,
ठीक है, वैसे भी विनाशक नाग अभी सील में है, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी और को बुलाना होगा।
तभी बलिष्ठ व्यक्ति ने नील की तरफ देखकर व्यंग्य किया,
सच्चाई जानने में एक पल लगेगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो
नील ने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर उसने दैवीय साम्राज्यों के सूर्यमंडल विशेषज्ञों की ओर देखा और बोला,
कृपया इन्हें भी अपने साथ ले चलिए।
उस पल सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञ लकड़ी की मूर्तियों की तरह जमे खड़े थे। वो नील और आध्यात्मिक जाति के बीच हो रही बातचीत का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे, पर इतना जरूर समझ गए थे कि नील कुछ साबित करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन पर तुरंत हमला नहीं हुआ था और यही उनके लिए आशा की आखिरी किरण थी। लेकिन तभी बलिष्ठ व्यक्ति ने ठंडी नजर से उन्हें देखा और बेरहमी से कहा,
ये तो चूहों का झुंड है, इन्हें मार देना ही बेहतर होगा, बाहर ले जाना बेकार की परेशानी है।
ये शब्द सुनते ही दैवीय साम्राज्यों के योद्धाओं का दिल बैठ गया। तभी यत्नेश ने काली तलवार निकाली और आगे बढ़ते हुए बोला,
ठीक कहा, एक बार ही काफी है।
इतना कहकर वो सम्राट विशेश्वर चोल और बाकी योद्धाओं की ओर बढ़ने लगा। वो हिल भी नहीं सकते थे और उनकी आत्माएं एक ही वार में नष्ट हो सकती थी। उसी क्षण नील की सुनहरी आंखों में उग्र चमक दौड़ गई और उसने दहाड़ कर कहा, रुको। लेकिन यत्नेश नहीं रुका, उसकी तलवार और भी तेजी से चमकी। दैवीय साम्राज्य के योद्धा भीतर ही भीतर चीख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अंत यूं बेबस और मौन होगा।
तो क्या होगा आगे? क्या यत्नेश कर देगा दैवीय साम्राज्य के सभी लोगों को खत्म, या नील वक्त रहते उठाएगा कोई कदम?
क्या आध्यात्मिक जाति के योद्धा इस बात की पुष्टि के लिए नील को पुष्कर महाद्वीप में ले जाएंगे? और क्या नील पाप की मीनार को उनके चंगुल से बचा पाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।